अरुणिमा सोफे पर बैठी हुई थी और दिमाग में बस वही सारी बातें चल रही थी कि कैसे बचपन में उसके और आरुषि के साथ इतना कुछ हुआ था कि अरुणिमा को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं। ये सारी बातें उसे बृजेश जी ने बताई थी। बृजेश जी ने फ़ोन पर अरुणिमा को आगे बताया कि जब आरुषि ने अरुणिमा को ट्री हाउस से नीचे गिरा दिया तो अरुणिमा का सिर फट गया, जिसकी वजह से उसके सिर से बहुत खून निकलने लगा। बृजेश जी और आशा जी बहुत ज़्यादा घबरा गए। वो जल्दी से अरुणिमा को लेकर अस्पताल चले गए। अरुणिमा पूरे 20 दिन तक कोमा में रही थी। उसके सिर की सर्जरी हुई थी, लेकिन जब तक अरुणिमा कोमा में थी तब तक बृजेश जी और आशा जी आरुषि के लिए एक दिल दहलाने वाला फ़ैसला ले चुके थे। वो कोई सामान्य लड़की नहीं थी, ये बात वो समझ चुके थे, और उसे सामान्य लोगों के बीच रखकर वो बाकी लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डाल सकते थे, खासकर अरुणिमा की तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने दो बार अरुणिमा की जान लेने की कोशिश की थी और दूसरी बार तो वो लगभग कामयाब ही हो गई थी। इसीलिए उन्होंने आरुषि को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाकर उसका इलाज शुरू करवाया, लेकिन वहां डॉक्टर ने साफ कह दिया कि आरुषि का इलाज संभव नहीं है, उसे मानसिक चिकित्सालय में रखना ही पड़ेगा, तभी वो ठीक हो सकती है। आशा जी और बृजेश जी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। एक बेटी की सुरक्षा के लिए वो दूसरे की ज़िंदगी संकट में नहीं डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर ये फ़ैसला ले लिया और आरुषि को मानसिक चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया। जब अरुणिमा को होश आया तब उसके माता पिता को पता चला कि उसके साथ एक और बड़ा हादसा हो गया। वो अपने जीवन के पिछले दिनों को भूल गई है, उसे कुछ भी याद नहीं था और वो एकदम से एक नई बच्ची की तरह उनके सामने थी जो उन्हें पहचानती तक नहीं थी। आशा जी ने उसे याद दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बृजेश जी ने मना कर दिया, ये कहकर कि ये अरुणिमा के लिए ही ठीक है, अगर उसे इस बारे में पता चलेगा तो उसे बहुत दुख होगा कि उसकी अपनी बहन, जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, वही उसकी जान लेना चाहती थी, और वो भी अपनी बीमारी की वजह से। इसलिए बेहतर है कि अरुणिमा को कुछ याद ही ना आए। इसके लिए उन्होंने अरुणिमा को विटामिन की गोलियों के रूप में वो दवाई देनी शुरू की जो उसकी याददाश्त को कभी वापस आने नहीं देती थी, और इस तरह अरुणिमा अपने गुजरे दिनों को कभी याद नहीं कर पाई। इसी वजह से उसने आरुषि को भुला दिया था और आरुषि अब उसकी याद का हिस्सा नहीं थी। अगर कभी अरुणिमा वो दवाई लेना भूल जाती तो उसे अपने माता पिता से बहुत डांट पड़ती, क्योंकि ये दवाई उसके लिए बहुत ज़रूरी बताई गई थी। इसलिए धीरे धीरे अरुणिमा को आदत हो गई कि वो उस विटामिन की गोली को ले जिसे उसके माता पिता उसकी भलाई के लिए ज़रूरी बताते थे। वहीं दूसरी तरफ बृजेश जी और आशा जी आरुषि से मिलने के लिए अक्सर बड़े बड़े अस्पताल जाया करते थे, पर इस तरह कि अरुणिमा को भनक न लगे। लेकिन एक दिन जब वो दोनों अस्पताल गए तो वो हैरान रह गए, क्योंकि आरुषि अस्पताल से भाग गई थी। भागने से पहले उसने जिस कमरे में रहती थी उसमें ढेर सारी चिट्ठियां छोड़ रखी थी। हर एक चिट्ठी में एक ही बात लिखी थी, मैं अरुणिमा को जान से मार दूंगी क्योंकि वही तुम दोनों की पसंदीदा बेटी है, जबकि तुम मुझे अपनी बेटी मानते ही नहीं हो। आशा जी और बृजेश जी ने आरुषि को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। उनके दिल में एक गहरा डर बैठ गया कि अगर आरुषि ने अपने लिखे हुए शब्दों को सच कर दिया तो वो अरुणिमा को जान से मार देगी। यही डर उनके जीवन का सबसे बड़ा डर बन गया। अरुणिमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे याद आया कि जब उसके पिता का एक्सीडेंट हुआ था और वो अपनी माँ से मिलने के लिए अस्पताल गई थी, तब उसने अपनी माँ से कितनी मिन्नतें की थीं, कितनी गिड़गिड़ाई थी कि उसे आस्तिक से अलग होना है। लेकिन आशा जी ने अरुणिमा को बहुत भला बुरा कहा और उसे आस्तिक के साथ रहने पर ही मजबूर किया। आज अरुणिमा को समझ में आ रहा था कि वो ये सब पैसा या रुतबे के लिए नहीं कह रही थी, बल्कि इसलिए कह रही थी क्योंकि उन्हें डर था कि एक तरफ बृजेश जी घायल हालत में है और अगर अरुणिमा आस्तिक से अलग हो जाएगी तो वो आरुषि का शिकार बन सकती है। ऐसे में आशा जी अकेले उसे नहीं संभाल सकती थी। उस वक्त के लिए आस्तिक का उसके साथ ढाई बनकर रहना जरूरी था। अपनी माँ के प्यार पर संदेह करने के लिए आज अरुणिमा को खुद पर शर्मा रही थी। वो धीरे धीरे खड़ी होती है और इसी विचार में खोई आगे बढ़ रही थी कि एकदम से उसका सिर चकरा जाता है और वो जोर से गिरने लगती है। आस्तिक वहीं पास खड़ा था। उसने महसूस किया कि अरुणिमा गिरने वाली है तो वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ा, पर तब तक अरुणिमा फर्श पर गिर चुकी थी। आस्तिक तुरंत उसके पास फर्श पर बैठ गया। उसने उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। अरुणिमा की आंखें बंद थी लेकिन वो रो रही थी। आज तक उसके दर्द को समझने वाला कोई नहीं था, पर आस्तिक समझ रहा था। उसने अरुणिमा को संभाला और उसे सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया, फिर उसके मुंह पर पानी के छींटे डाले और उसे पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद जब अरुणिमा को कुछ राहत महसूस हुई तो उसने आंखें खोली, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू अब भी थे। वो बहुत हताश और निराश होकर रो रही थी। उसने आस्तिक को कसकर गले लगा लिया और सिसकते हुए बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये मेरी बहन है और वो मुझे जान से मारना चाहती है। मेरी अपनी बहन मुझसे नफरत करती है। आस्तिक ने उसे गले लगाए रखा जब तक कि वो थोड़ा संभल नहीं गई, पर आस्तिक ने तय कर लिया था अगर अरुणिमा इस वक्त सारे दर्द एक साथ झेल रही है तो उसे सारी सच्चाई भी एक साथ जाननी चाहिए ताकि उसे बाद में कहीं और से ये सब न पता चले। उसने अरुणिमा को संभालते हुए कहा, अरुणिमा तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जो बताया है उसके अलावा भी एक बात है जो तुम्हें जाननी जरूरी है। अरुणिमा के कानों में आस्तिक की आवाज गूंजती है। वो आस्तिक से अलग होकर अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगी, जैसे कह रही हो जो भी है मुझे अभी बता दो। आस्तिक ने उसे इतने गंभीर भाव से देखा कि वो उसके चेहरे को अपने हाथों में लेता है और धीरे से बोला, तुम्हें ये जानना चाहिए ताकि तुम अपने सारे फैसले दिल से नहीं दिमाग से ले सको। क्या बात है आस्तिक? अरुणिमा ने धीमी कांपती आवाज में पूछा। आस्तिक ने गहरी सांस ली और बोला, सूर्य मल्होत्रा। दरअसल सूर्य अकेला काम नहीं कर रहा था, वो तो बस तुम्हारी बहन के हाथों की कठपुतली था। आरुषि सूर्य की गर्लफ्रेंड थी और वो उसी के इशारे पर सारे काम कर रहा था। यहाँ तक कि जब उसने तुम्हारा किडनैप किया था तो उसके पीछे भी आरुषि का ही हाथ था। उसने ही सूर्य को ऐसा करने का आदेश दिया था। और तुम्हारा जो कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें हमने अपने बच्चों को खो दिया था वो भी आरुषि ने ही करवाया था।